زبور کی کتاب اور زبور نمبر 126، بڑا مشہور و معروف زبور، ہاللویا، خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ وہ کوالٹی کو پسند کرتا ہے، کوانٹٹی کو نہیں. ہاں، اگر کوانٹٹی کی بات ہوتی تو پھر ہم بڑا مشکل کام ہو جانا تھا، لیکن کوالٹی یہ تھی، جن میں کوالٹی تھی ان کے لیے کہا گیا جہاں دو یا تین جمع ہوں گے میں ان کے بیچ میں موجود ہوں گا. ہللویا. اور جہاں یسوع ہے وہاں زندگی ہے، جہاں یسوع ہے وہاں شادمانی ہے، جہاں یسوع ہے وہاں رویدگی ہے، جہاں یسوع ہے وہاں خوشحالی ہے، جہاں یسوع ہے وہاں خوشی ہی خوشی ہے. ہللویا. وہاں روح القدس خود ماحول بنا دیتا ہے. اندر کا ماحول بن جائے تو باہر ماحول خود بخود ہی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. پریز دی لارڈ. آؤ ہم خدا کے کلام کی تلاوت کو سنیں، جن کے ہاتھوں میں بائبل مقدس ہے کھولیے. جب خداوند سیون کے اسیروں کو واپس لایا تو ہم کیا تھے؟ خواب دیکھنے والوں کی مانی تھے. اس وقت ہمارے منہ میں ہنسی اور ہماری زبان پر رگنی تھی. تب قوموں میں یہ چرچا ہونے لگا کہ خداوند نے ان کے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں. خداوند نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور ہم شادمان ہیں. اے خداوند، جنوب کی ندیوں کی طرح یہ گفتگو ہو رہی ہے، اور گفتگو کا انداز کیسا ہے؟ اے خداوند، جنوب کی ندیوں کی طرح ہمارے اسیروں کو واپس لا، جن کو اسیری سے نکلنے کا تجربہ ہوا ہے وہ صرف اپنی اسیری کی رہائی سے خوش نہیں، ہاں؟ بلکہ ان کی دعا کا رخ اب ان اسیروں کی طرف بھی ہے جو ابھی تک چھڑائے نہیں گئے. اے خداوند، جنوب کی ندیوں کی طرح کیا لکھا ہے؟ ہمارے اسیروں کو واپس لا. جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے، جو روتا ہوا بیج بونے جاتا ہے، جو روتا ہوا بیج بونے جاتا ہے وہ اپنے پولے لیے ہوئے شادمان لوٹے گا. خدا کے کلام کا پڑھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت اور باعث رہنمائی ہو. سب بولیے دونوں ہاتھ اٹھا کر آمین. آمین. زبور 126 جو ہم گاتے بھی ہیں، قیدی سیوں نے لے آندے جا چھڑا. اگر آپ لکھ رہے ہیں تو اس کو لکھئے، اگر آپ غور سے سن رہے ہیں تو اپنے ذہن نشین کرتے ہوئے اس کو اپنی روح میں اتاریے. آج دوپہر جب میں عبادت کے لیے دعا کر رہا تھا، تیاری کر رہا تھا، تو میرے مائنڈ میں کچھ اور تھا کہ کچھ اور سنایا جائے، لیکن خدا نے روح القدس کی رہنمائی سے اس زبور کی طرف میرا دھیان لگایا. और याद रखिए कि खुदा का कलाम करने का कोई रूहानी मकसद है हमारे लिए। ऐसा हो नहीं सकता कि खुदा बेफायदा कलाम करे। और हमने उसका मुजाहिरा भी अभी देखा है, कई नौजवान बहनें बेटियां और खुदा के हजूर आंसू बहा रही थी। सो आज जिस खास रूहानी मकसद की तरफ मैं आपको कलाम के बाद लेकर जाने वाला हूं, सबसे पहले हम इस जबूर के तल्लक से चंद अहम बातें सीखेंगे। ये जबूर का क्या तल्लक है आज के ईमानदारों के साथ, कलीसियाओं के साथ, रूहानी क़यादत के साथ। जब हम किसी भी आयत को पढ़ते हैं, किसी भी मजमून को सुनते हैं, तो उसका आज के दौरे हाजरा के ईमानदारों, लीडर्स के साथ बहुत गहरा तल्लक होता है। आमीन। रात को भी मैं चर्च में, पास्टर जूलियस के चर्च में ये बता रहा था कि खुदा हालात और हालत को देखकर कलाम करता है। सो जो रूहानी हालतें हैं हमारी, खुदा उसके मुताबिक बोलता है। और जब हम इस सबूर को पढ़ते हैं, इसका तारुफ पढ़ते हैं, इसका पस मंजर जानते हैं, तो जब अशीरी में, गौर से सुनिएगा, जब कौम बनी इसराइल, यहूदी लोग, ये अशीरी में थे, यहूदियों के पास एक फरमान पहुंचा और शाहे फारस खोरस ने ये हुक्म जारी कर दिया कि यहूदियों को असीर से आजाद किया जाए। अब ये बड़ी ही यहूदियों के लिए पुरमुसर्रत खबर थी। 70 साल के अंदर ये पहली दफा हुआ कि उनको ऐसी खबर सुनाई गई। उनके लिए बड़ी ही ये अमेजिंग बात थी कि 70 साल के अंदर उनको ये खुशखबरी मिले कि वो वापस अपने मुल्क को जाएंगे। गौर से सुनिएगा, क्योंकि कई यहूदी अपने अंदर ये सोच लेकर बैठ गए थे, हम अपने मुल्क को फिर कभी नहीं देखेंगे। क्या सोच थी उनकी? फिर हम यरूशलेम को वापस नहीं जाएंगे। 70 साल हो गए थे, लेकिन खुदा अपने लोगों की फिक्र करता है। खुदा अपने लोगों की तमाम हालतों से उनको निकालना जानता है। और यही कुछ मिस्र के अंदर भी लिखा, खुदा को याद आया, खुदा ने खबर ली, खुदा उतरा ताकि अपने लोगों को रिहाई दे सके। आमीन। गौर से सुनिए, जब यहूदी लोग वो बाबल की असीरी से वापस निकल रहे थे, उनकी कफियत ऐसी थी कि वो कहके लगा रहे थे, वो गीत गा रहे थे, और वो गाते हुए जब हमने पढ़ा है, उस वक्त हमारे मुंह में हंसी थी। क्या थी जी? और हमारी जुबान पर रागनी थी। कब? जब खुदावंद सय्यून के असीरों को वापस लाया। आप सुन रहे हैं गौर से? आप सुन रहे हैं? जब खुदा हमारे असीरों को वापस लाया तो हमारे मुंह में क्या थी? रागनी। और हम हंस रहे थे, कहके लगा रहे थे, कहके लगाते हुए, रागनी गाते हुए, गीत गाते हुए वो खुदावंद के हजूर आ रहे थे। और उनकी खुशी की इंतहा देखिए कि वो इतने शुक्रगुजार असीरी से रिहाई के बाद, इतने शुक्रगुजार असीरी में उनके पास गीत नहीं थे। जबूर 137 में शायद वो जिक्र करते हैं कि बाबलियों ने जब हमें कहा कि गीत गाओ, कोई खुदावंद के गीतों में से कोई गीत गाओ, तो कहने लगे हम असीरी में कैसे गाएं। लेकिन जब उनको असीरी से रिहाई मिली तो वो गाते हुए खुदावंद के हजूर
तमजीद करते हुए वहां से निकल रहे हैं। और उनके गीत और शुक्रगुजारी का मजमून यह है कि खुदावन ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया, क्या मजमून है उनके गीत का, शुक्रगुजारी का। हाँ हाँ, सही है, सही कह रहे हैं आप। क्या किए हैं? बड़े बड़े काम किए हैं। वाह। और हम क्या हैं? हम शादमान हैं। ये अशीरी के बाद की कफियत है। और बाइबल मुकद्दस में जब हमने इस ज़बूर को पढ़ा है तो वो जब अपनी सर जमीन पर पहुंचते हैं तो वहां उनको अपनी जमीन बंजर मालूम हो रही है। अब उनको खतरा यह है, मुश्किल यह है कि इस साल हम कैसे गुजारा करेंगे, हम कैसे सरवाइव करेंगे। ये साल पहला साल उनकी फसल नहीं है, कटाई नहीं हो सकती। गौर से सुनिए, लेकिन वो असरे नो फसल बोने के लिए और फिर उसको काटने के लिए ईमान के साथ खड़े हो गए हैं। हालेलुया, उम्मीद के साथ हैं। सो आज के ईमानदारों के लिए ये जबूर बहुत बड़ा चैलेंज है। जब हमारे सामने नाउम्मीदियां हों, मुश्किलात हो, जब हमारे सामने हालात अच्छे ना हो, तो फिर हमारी कफियत कैसी होती है? क्यों जी? हाँ, फिर हम कैसे उस हालात के अंदर पिसते हैं? लेकिन ये ज़बूर हमें ये आगाही दे रहा है कि वो जब फसल बोने के लिए, फसल की उम्मीद रखने के लिए बीज बोते थे तो कैसे बीज बोते थे? हाँ हाँ, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। मैं लंबा नहीं खड़ा नू, इस वजह तो शार्ट शार्ट काम दस रहे हैं, तुसी ज्यादा मुश्किल च ना पाओ। क्या कर रहे हैं? उनका स्टाइल ये होता था कि वो कमर के साथ एक कपड़ा बांध लेता। आपने किसान देखे है ना, उनके साथ एक चादर बांधी होती थी और उसमें वो बीज डालते थे। और जब वो उस बंजर जमीन पर जाते और जाकर बीज बोते थे तो साथ उनके आंसू बहते थे और वो आंसू चादर पर आते थे और वो इस ईमान के साथ रोते हुए बीज बोते थे कि आज जब हम आंसुओं के साथ बीज बो रहे हैं तो फिर इसी जमीन से हम खुशी के साथ फसल को भी काटेंगे। आमीन। ये है रूहानी तौर पर नाउम्मीदियों में उम्मीद को हासिल करना। आज हमारी उम्मीदें बस यही तक है कि अमेरिका का ठप्पा लग जाए। क्यों जी? मैं निकलिया तो मैं औरां नूं भी ले जा, हैं? यही फिक्र है ना जी, मेरा यूरोप का वीजा लग जाए। हाँ, अगर खुदा की तरफ से लग जाए तो अच्छी बात है, पठाठिया करके नहीं है। नो, इनकी रिहाई के पीछे खुदा का मंसूबा है। इनकी रिहाई के पीछे कौमों में चर्चा हो रहा है। इनकी रिहाई अगर हुई है तो ये खुदा ने मुमकिन किया है। हालेलुया, खुदा ने इन सीरों को रिहाई बख्शी है। सो आज मैं आपको इनकर्ज करना चाहता हूं, जैसे ज़बूर 30 की 5वीं आयत के अंदर लिखा है, रात को शायद रोना पड़े, रात को शायद रोना पड़े पर सुबह को खुशी की नौबत आती है। हालेलुया, शायद रात को रोना पड़े पर सुबह को खुशी की नौबत आती है। सो इनकी दुआ का रुख क्या है? सब बोलिए मेरे साथ, ए खुदावन। हाथ उठाकर बोलिए, हाथ उठाकर और चेहरे ऊपर करके, ए खुदावन, जनूब की नदियों की तरह हमारे असीरों को वापिस ला। क्या दुआ है? हमारे असीरों को वापिस ला। जनूब का वो इलाका जो बंजर था, सरा था, वो कह रहे थे ये कैसे मुमकिन है कि यह बात हो सके, लेकिन जो कुछ इंसान से मुमकिन नहीं वो खुदा से मुमकिन है। हालेलुया, वो खुदा से मुमकिन है। और ये उम्मीद करते थे, और इन्होंने देखा जनूब की नदियां जब शदीद बारिश होती थी तो वही बंजर और सुनसान सहरा जो है वो खुश्क नदियां जो थी वो पानी से लबरेज हो जाती थी। आमीन। बियाबान में हर तरफ सब्जा ही नजर आने लगता था। और इनके अंदर जो रूहानी फिक्र जो मैंने आज आपके लिए और अपने लिए यहां से एक नुक्ता रूहानी तौर पर लिया है वो ये है कि आज की कलीसिया को, आज की कियादत को असीरों के लिए फिक्र करने की जरूरत है। किसके जी? हाँ, जिनके जहन तारीख हो गए हैं उनकी फिक्र करने की जरूरत है। हाँ, जिनके घर उजड़ रहे हैं उनके लिए, ये किसको मैं कह रहा हूं? हाँ, ये रूहानी लीडर्स, ये ईमानदार बेटियां, ये हमारे बुजुर्ग, इनकी ये दुआ होनी चाहिए, ये रुख होना चाहिए, ऐ खुदावंद जनूब की नदियों की तरह हमारे असीरों को वापस ला। किसी खादिम ने क्या खूब इस बात को कलम बंद किया है, और उसने कहा है कि अंजील की बिशारत के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, अंजील लोगों तक पहुंचाने के लिए मुसीबतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, अंजील से लोगों को रिहाई दिलाने के लिए तूफानों में से गुजरना पड़ता है, गम के तूफानों को सामना करना पड़ता है। लेकिन ये आयत हमें ये बता रही है कि इन तूफानों को थमाने के लिए खुदावंद हमारे साथ है। हालेलुया। आपको याद है जब यीशु ने कहा आओ पार चलें, तो पार जाने के लिए कश्ती जब झील पर थी तो क्या आ गया? हैं? तूफान, पानी के अस्तहा, हलचल मच गई पानी के अस्तहाओं में। जबूर की किताब में गालबन लिखा हुआ है कि पानी के अस्तहा हलचल मच गई, क्योंकि आगे जो जिसको आजाद करना था लश्कर उसके अंदर था। ओए होए होए, लश्कर नापाक बदरूहों के लश्कर से आजाद करवाने के लिए आपको तूफानों में से गुजरना पड़ेगा, आपको हालात में से गुजरना पड़ेगा, आपको मुसीबतों में से गुजरना पड़ेगा, आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। लेकिन खातर जमा रखिए, तूफानों को थमाने वाला खुदावंद आपकी कश्ती में मौजूद है, आपके साथ है, आपकी जिंदगियों में है, आपके अंदर है। खुदावंद उन सारे तूफानों में से गुजार कर आपके लिए रास्तों को हवार करेगा। आमीन। वो शख्स जो बंधा हुआ था, झकड़ा हुआ था, कई सालों से उसने लोगों का रास्ता बंद किया हुआ था, खुदावंद यीशु की कुदरत ने उसको आजाद कर दिया। सो ऐ खुदावंद जनूब की नदियों की तरह हमारे असीरों को वापिस ला। जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटते हैं। किसी खादिम ने लिखा है जिन्होंने रूहों को मसीह के लिए जीत लिया है, बोले मेरे साथ, जिन्होंने रूहों को मसीह के लिए जीत लिया है उन्होंने पहले रूहों के लिए आंसू बहाए हैं। जो आंसुओं के साथ होता है वो खुशी के साथ काटेगा। मैंने देखा है यहां लोगों को रोते हुए, अगर कोई शराब में मर जाए, हरामकारी में मर जाए, खुदकुशी कर ले, उस वक्त लोग रोते हैं, पहले नहीं रोते, पहले उनके लिए सफाई मातम नहीं बचाते कि खुदावंद इसकी असीरी से इसको आजाद करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें अपने उन बहन भाइयों के लिए जो असीरी में है, गुनाह की असीरी में है, बदकारी की असीरी में है, नाफरमानी की असीरी में है, उनके लिए खुदावंद के हजूर आंसू बहाने की जरूरत है। आमीन। उनके लिए आंसू, और यहां तसल्ली भी मिल रही है, सिर्फ आंसू नहीं बहाए जा रहे, बल्कि कहा यह जा रहा है कि जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे भी। यर्मिया का नोहा तीसरा बाप, पढ़िए मेरे साथ इस आयत को। यर्मिया का नोहा, नोहा की किताब उसका तीसरा बाप और 48वीं आयत, क्या लिखा हुआ है? मेरी दुख्तरे कौम की तबाही के बायस, अब गौर से सुन रहे हैं कलाम को, मेरी दुख्तरे कौम की तबाही के बायस मेरी आंखों से आंसुओं की नहरें जारी हैं, मेरी आंखें क्या है, अश्क बार हैं और थकी नहीं, उनको आराम नहीं जब तक खुदावंद आसमान पर से नजर कर कर ना देखे। कब तक आंसू जारी है? हाँ? कब तक मेरी आंखें अश्कबार है? कब तक मेरी आंखें थकी नहीं, आराम नहीं, जब तक खुदावंद आसमान पर से नजर न करते। हालेलुया। हम थोड़े से आंसू बहाकर अपनी बेबसी का इजहार करके फिर खामोश, लेकिन यर्मिया कह रहा है नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। मैं उस वक्त तक चैन ही नहीं लूंगा, मैं उस वक्त तक थकूंगा ही नहीं जब तक खुदावंद की तरफ से मेरे असीरों की रिहाई का ऐलान ना हो जाए। हालेलुया। और यर्मिया की किताब 31वां बाब जब हम पढ़ते हैं, यर्मिया की किताब का 31वां बाब और उसकी 15वीं आयत से, ऐ खुदावंद जनूब के नदियों की तरह हमारे असीरों को वापस ला, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटते हैं। वो चाह ये रहे थे, उनकी ख्वाहिश ये थी रूहानी तौर पर, जो भीड़ निकली है ना, ये थोड़ी ना हो, ये बहुत बड़ी भीड़ बन जाए। हालेलुया। ये कलीसिया थोड़ी ना रहे, ये बड़ी बन जाए, और ये फिर आसमान पर बड़ी भीड़ की तरह नजर आए, और कहां जाए ये कौन है, आवाज आई ये वो है जिन्होंने अपने जामे बर्रे के लहू से धोए हैं। हालेलुया। वो थोड़े ना रहे। यर्मिया की दुआ, यर्मिया का रोना मातम उस वक्त तक है जब तक खुदा की तरफ से जवाब ना आ जाए। खुदावंद यूं फरमाता है, 15वीं आयत से पढ़िए, खुदावंद यूं फरमाता है कि रामा में एक आवाज सुनाई देती है, नोहा और जार जार रोना, राखल अपने बच्चों को रो रही है। जरा गौर से सुनना, ये एक तारीखी जगह है, एक तारीखी जगह जो यरूशलेम में बनाई गई, पहली बिल्डिंग, पहला जो मंजर आपको यरूशलेम में दाखिल होते हुए नजर आएगा वो राखल का मकबरा है, और वहां औरतें अपने शोहरों के लिए, अपने बच्चों के लिए रोती थी जब वो उनको नजर नहीं आते थे। तो रामा में क्या है, रोना, मातम और राखल अपने बच्चों को रो रही है, वो अपने बच्चों की बाबत तसल्ली पजीर नहीं होती क्योंकि वो नहीं है। बेटियों गौर से सुनना, क्योंकि वो नहीं है। ये है फिक्रमंदी। कलीसिया की बेटियों की फिक्रमंदी, सहेली किधर है मेरी, मेरा भाई किधर है, लीडर किधर है, क्यों जी? ए नहीं ठीक है, नहीं आया खसमा नु खाए, नहीं आई खसमा नु खाए, अपने है ना। ये साड़ी बोली अंज दी हो गई है, है? क्या कलीसिया बढ़ेगी? कलीसिया रूहानी तरक्की करेगी? क्या कलीसिया में रूहानी फिक्र जन्म लेगी? बल्कि नुकसान होगा। अब देखिए जी, मैं पर्चियां देखना, थैंक यू जिसने ये पर्ची दी है भाई ने। लेकिन क्या कभी ऐसी दरखास्त पादरी साहब को दी, आई कभी पादरी साहब ऐसी दरखास्त को कि पादरी साहब एक फैमिली कई महीनों से नहीं आ रही, आज उनके लिए दुआ ना करें हम कलीसिया में? हमारी ये सहेली नजर नहीं आ रही, अब हम उनके लिए दुआ ना करें? क्या ऐसी दुआइयां दरखास्तें आई कभी? मुंडा नहीं दरखास्त दे दो, कुड़ी नहीं दरखास्त दे दो, मैं इसके, हमने दुआ की अभी बोझ के साथ। लेकिन अभी रूहानी असीरी और गुनाह की असीरी से लोगों के लिए खुदा के हजूर आंसू बहाने की जरूरत है। यर्मिया कह रहा है, मैं उस वक्त तक नहीं रुकूंगा जब तक खुदा की तरफ से मुझे कोई तसल्ली बख्श बात ना मिल जाए। आगे क्या लिखा है? खुदावन ने यर्मिया का रोना, आंसू और मातम देखा है, और खुदावन यूं फरमाता है कि अपनी जारी की आवाज को रोक और अपनी आंखों को आंसू आंसुओं से बांध रख, क्योंकि तेरी मेहनत के लिए अजर है। खुदावन फरमाता है कि वो दुश्मन के मुल्क से वापस आएंगे। हालेलुया! जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। हालेलुया! खुदा सिर्फ रोने ते नहीं ला दिता सानू, और रोना मुकाना भी जानता है। हालेलुया! जवाब आया, आंसू बहाना बंद कर दिया, अब तेरी जारी की आवाज नाला ना करना, ओए अब तू छाती ना पीटना। तेरे लिए खुशखबरी ये है, जो तूने मेहनत की है उसका अजर मेरे पास है। हालेलुया! उसका अजर मेरे पास है। इनकी सोच ये थी कि जो बीज आज हम आंसुओं के साथ बो रहे हैं ये बड़ी फसल होगी, और ये फसल काटी जाएगी और हम इसको जमा करेंगे। पढ़ा है ना हमने, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। और फिर आगे बंद कर दिया आपने सब कुछ, लेते चल रहे हैं थोड़ा थोड़ा। हाँ जी, हाँ, वो फिर कैसे लौटेगा? अपने पोले लिए हुए शादमानी से लौटेगा। अब यूहन्ना की अंजील में जब यीशु मसीह याकूब के कुएं पर बैठे हुए थे और शागिर्दों को कहा गया कि जाओ सामने के गांव से कुछ खाने के लिए ले आओ, हैं? और ऐसा नगरी की कलीसिया सुने, मैं कोई हादसाती तौर पर ना खलोताए थे, क्यों जी? कभी कोई नहीं आया संदे फेरा ला गए ने, फेरा कितने और पासे भी पै सकता सी। पर कलाम ये कहता है जरूर है कि वो सामनिया में से होकर गुजरता, हाँ जरूर था कि वो सामरिया में से होकर गुजरता। वाह, ए सामरिया में क्या था? सामरिया में ऐसी औरत के साथ मसीह की मुलाकात होनी थी जिसके अंदर से हर तरह की तारीकी दूर होनी थी, और उसकी रोशनी ने आधे शहर को जीतकर यीशु के पास लाना था। हालेलुया! जरूर था कि वो सामरिया में से होकर गुजरता। ओके, शागिर्दों को भेज दिया गया और आते तक यीशु ने उस औरत को जीत लिया। वो तो चली गई घड़ा छड़ा छोड़कर, वो शहर में चली गई। अब यीशु शागिर्दों को कुछ समझा रहा है, बता रहा है, जरा गुफ्तगू मुलाजा फरमाइए, क्या गुफ्तगू हो रही है। यूहन्ना की इंजील का चौथा बाब, बाइबल मुकद्दस को ध्यान से पढ़ा करें, और शौक, सिर्फ शौक नहीं जोक भी होना चाहिए। क्यों जी? हाँ, पैशन होना चाहिए पढ़ने का। देखो खुदावंद क्या चाहता है कलीसिया से, लीडर से, ईमानदारों से। वाह, 34वीं आयत में लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा, मेरा खाना यह है कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम कहते नहीं कि फसल के आने में अभी 4 महीने बाकी हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूं, अपनी उठाकर आंखें उठाकर खेतों पर नजर करो, फसल पक गई है। फसल पक गई है और काटने वाले, हाँ, काटने वाला मजदूरी पाता और हमेशा की जिंदगी के लिए फल जमा करता है, ताकि बोने वाला, बड़ी टेक्निकल बात यीशु कर रहा है, बोने वाला और काटने वाले दोनों मिलकर खुशी करें, क्योंकि इस पर यह मिसल ठीक आती है, बोने वाला और है, काटने वाला और है, और मैं तुम्हें वो खेत काटने के लिए भेजा जिस पर तुमने मेहनत, औरों ने मेहनत की और तुम उनकी मेहनत के फल में शरीक हो। आमीन। यहां मेहनत किसने की? बुजुर्ग अल्लाह दिता ने। हाँ जी, किसने की मेहनत? याद है आपको अपने बुजुर्ग, याद है कि नहीं? बोले ही नहीं तुसी, याद किथे ने? ते मैं याद करवाण दिया तुहानूं, याद है? रात को भी एक गवाही उनकी मैं सुन रहा था, बड़े बड़े उठते थे बदरुओं को निकालने के लिए, खुदा का खादिम एक ही दफा जाता था, बदरुआ फुड़क के बाहर आते दिया है, फुड़क के बाहर, तालियां बजाओ नाचते, क्या बात। हाँ जी, और तुमने मेहनत नहीं की। एक वक्त था जब हम सुनते थे ग्लेडू मिशन आ रही है, ये ताने देते थे लोग, ये रोते हैं, इनके घरों में से रोने की आवाजें, चर्च में से रोने की आवाजें, लोग हम पर तोमत लगाते थे। मैं आज भी आपको इनकर्ज करना चाहता हूं, ये तोमत एक बार नहीं, हजार बार नहीं, लाखों बार, करोड़ों बार हम पर लगे, पर आओ हम इस तोमत को सहने के लिए फिर तैयार हो जाए कि ये ग्लेडू मिशन है, ये रोने वाले लोग हैं, पर आज काम खराब हो गया है, आज मशहूरे हो गए, मुकदमा करने वाली कलीसिया बन गई है। क्यों जी? एक कुर्सियां चलाने वाली कलीसिया बन गई है, हाँ, ये तो नसाण वाली कलीसिया बन गई है, तो पसाण वाली कलीसिया बन गई है। ए वाली कलीसिया चाहिए, नसाए ते पसाए, वो दस नहीं रहे, तुसी बोल ही नहीं रहे, कम बुजुर्गो, ये मशहूर हो है। या फिर ये मशहूर हो, ईसा नगरी की कलीसिया, कराची की कलीसियों में से बसाने वाले, बगाने वाले नहीं, बल्कि रूहों को जीतकर मसीह के गला में शामिल करने वाले लोग हैं। हालेलुया। और उसके लिए रूहानी मेहनत की जरूरत है। ऐ खुदावंद, जनूब की नदियों की तरह हमारे हसीरों को वापस ला। कितने साल, कितने साल आसिया में पालूस ने आंसू बहाए? 3 साल। कितने? ओए, असी एक ही नाइट प्रेयर करके ना ते बाथोस, ए नाइट प्रेयर हो गई, ते बाद फिर नाइट ही आ। क्यों जी? फिर मिड नाइट ते आ गए, पहले फुल नाइट, फिर मिड नाइट, ते फिर गुड नाइट, गुड फिर गुड नाइट, फिर रात को भी हम ये बात कर रहे थे, कितनी कितनी अफसोस की बात है। पहले खुदा के खादिम खुदा के साथ फेस बाय फेस होते थे, पर आज फेसबुक फेसबुक फेस टू फेस बुक, नया वाली बुक ते ना ही खुदा दे सामने फेस टू फेस, कोई और ही फेस हो गया है। हाँ, लेकिन अगर आज भी कलीसिया इस बात के लिए तैयार हो जाए, ऐ खुदावंद जनूब की नदियों की तरह हमारे सिरों को वापस ला, तो खुदा इस बात को कंफर्म करने के लिए हमारे दरमियान में मौजूद है। हालेलुया, खुदा हमारे साथ यहां इस बात को कंफर्म करेगा। आमीन। यर्मिया को जवाब आया कि ना आया? हाँ, यीशु की इस बात का जवाब निकला कि ना निकला? क्यों जी? दसो हूं तुसी, सामरी औरत ने महल कोई अद्धे घंटे का क्रूस अटेंड किया होना यीशु का, कोई इश्तिहार लगे सन जी? और एक कलीसिया ने उस इश्तिहारा से ला छड़े, इश्तिहार लवो ते आ जाओ, एक ही अनाउंसमेंट ही बड़ी होंगी है जी, एक ही बड़ी अनाउंसमेंट। ओए होए होए, क्या पैशन है, क्या फिक्रमंदी है। आओ आज हम इस पैशन को इस बात को अपने अंदर लेकर उठे। ऐ खुदावंत जनूब की नदियों की तरह हमारे सिरों को वापस ला। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि एक बड़ी भीड़ खुदा के गला में शामिल की जाए? हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि लोग बुरे कामों से तौबा करें? आपके मोहल्ले में आते हुए आज भी मैं और पास्टर सरफराज यही दुआ कर रहे थे, खुदावंत हमने देखा छोटे छोटे बच्चे इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे थे एक दूसरे को। हाँ, बेहुदा गालियां, क्या उनको मसीह की जरूरत नहीं? हाँ, क्या हम ये कह नहीं सकते उनके लिए कि खुदावंत प्लीज हमारी ये नस्ल हमें वापस कर दे, हमें वापस चाहिए। आओ आज इस बोझ के साथ अपने आप को खुदावंत के हजूर झुका ले। हालेलुया, हालेलुया। और खुदावंत ने अपने अपने लोगों की हिम्मत को बढ़ाया लूका की अंजील के अंदर, और कहा हिम्मत ना हारना, दुआ करते रहना। सबूर 138 की तीसरी आयत के अंदर भी कहा, जब मैंने खुदावंत से दुआ की उसने मेरा हौसला बढ़ाया। हालेलुया। क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं, ईमान रखते हैं, खुदावंद हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे दरमियान में मौजूद है? खड़े हो जाइए अपने कदमों पर। अभी हदिये की तरफ नहीं जाएंगे, पहले ये हदिया डाल लें, उसके बाद हदिया। हालेलुया। आओ